सूफी की किताब स्याही और हरफों से नहीं बनती, वो कुछ नहीं बस एक दिल है बर्फ सा सफ़ेद। रिस्टार्ट प्रोग्राम की चौथी किस्त आप सभी प्यारे और सम्मानित श्रोताओं के लिए, आप दुनिया में जहां कहीं से भी इसे सुन रहे हैं। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग इस प्रोग्राम को सुनते हैं और सिर्फ पिछले 3 एपिसोड में ही इसने फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी खास चर्चा पैदा कर दी है। हालांकि कुछ और मामले भी थे, कुछ और सवाल पूछे गए। इस प्रोग्राम के पिछले 3 एपिसोड में हमने रूमी की एक नज़्म कविता से शुरुआत की थी, जो हाथी के बारे में है, जो धर्मों के बारे में है। हम 2 शेरों तक पहुँचे। हमने पिछले हफ्ते उन 2 शेरों की व्याख्या की और हम इसी तरह शेर दर शेर जारी रखेंगे जब तक कि इस नज़्म का असली मतलब साफ़ ना हो जाए और हम आपके लिए उस नज़रिए को स्पष्ट न कर दें जो रूमी रखते हैं। रिस्टार्ट का मतलब है शुरू से शुरू करना, ठीक वैसे ही जैसे मैंने सिमुर्गा की नज़्म सुनाई थी, शुरू से शुरू करना रिस्टार्ट का यही मतलब है। इसीलिए हमने प्रोग्राम का नाम रिस्टार्ट चुना। इसका मतलब है कि हमें वापस आना चाहिए और इन कई हज़ार सालों को एक नया चेकअप देना चाहिए, एक नया रिस्टार्ट, ये देखने के लिए कि रिस्टार्ट प्रोग्राम के भीतर कौन सा विषय छिपा है। बहुत ध्यान से सुनिए। मिसाल के तौर पर, जब आपको कैंसर होता है, आप पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहता है आपको कैंसर है, दूसरा कहता है आपको कैंसर है, तीसरा भी कहता है आपको कैंसर है। जब 3 डॉक्टर आपसे कहते हैं कि आपको कैंसर है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपको कैंसर है, आप कहेंगे हाँ। मैं पूछूंगा क्यों? आप 3 अलग अलग जगहों पर 3 अलग अलग डॉक्टरों की बातों का हवाला देंगे और कहेंगे सर, तीनों ने मुझसे कहा कि मुझे कैंसर है। आपका यकीन कि आपको कैंसर है 99% पक्का हो जाएगा। अब क्या होगा अगर इतिहास में 5000 बड़े आरिफों ने अलग अलग देशों में प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक, प्लेटो और गैलन से लेकर गेटे, टैगोर और हेगेल तक, और ध्यान दें नीत्शे और मॉरिस मैटरलिंक, और मैं हेगेल के बारे में बाद में समझाऊंगा, नीत्शे एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है जिसे हमें बाद में समझाना होगा, फिर आप रूमी और अत्तार, खवाजू केरमानी, सगीर इस्फ़ानी, निजामी गंजवी, शेख खरकानी और शाह नेमतुल्लाह वली तक आते हैं, वे सभी आपसे कह रहे हैं कि आपको आध्यात्मिक कैंसर है और आप इसे मानने से इनकार करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि 5000 डॉक्टर हकीम कहें कि आपको कैंसर है, उनमें से 5000 कम से कम 5000 सालों में, जिन्हें मैंने पढ़ा है उन्होंने 2000 से 3000 साल पहले सीधे हवाले दिए हैं। गाथा पढ़िए, वेदों में जाइए, हिंदुओं के पास जाइए, आप जहाँ भी जाइए, मैनिकीन्स के पास जाइए, मज़दाकियों के पास जाइए, इसका फ़ारसी बोलने वालों से कोई लेना देना नहीं है। दुनिया के आरिफों ने कहा है कि आपके पास ऐसे रहनुमा हैं जो आपको एक ऐसे धर्म की ओर ले जा रहे हैं जो सही नहीं है। यह 70 राष्ट्रों का युद्ध, जंग ए 70 मिल्लत है, और आपको एक आध्यात्मिक कैंसर है, और इस जिस्मानी कैंसर के लिए, जिसके लिए आप 100 साल से खुद को फाड़े डाल रहे हैं, ईश्वर ने चाहा जब आप मरेंगे तो आपका कई लाख साल पुराना आध्यात्मिक कैंसर आपको इतना तड़पाएगा कि आपको एहसास होगा कि यह जिस्मानी कैंसर जिसके लिए आप 100 साल से रो रहे थे, वो उन चंद 10 लाख सालों की तुलना में कितना छोटा वक़्त है जो हमें जीना है। सिर्फ इरफान और तसव्वुफ़ ही आध्यात्मिक कैंसर का इलाज कर सकते हैं। कोई और जो यह दावा करता है मैं तुम्हारे आध्यात्मिक कैंसर का इलाज कर दूंगा, रूमी के शब्दों में, बस उन्हें टॉयलेट में फ्लश कर दो, सीधी और सपाट बात। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मतलब जब रूह का नाम आता है, मैं रूमी के आखिरी 2 शेर कहूँगा क्योंकि वे इस प्रोग्राम से ताल्लुक रखते हैं। वह कहते हैं चुप रह ताकि तू सांस के बोलने वालों से वो सुन सके जो ज़ुबान और बयान, लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन में नहीं आया। चुप रह ताकि तू उस सूरज से वो सुन सके जो किताबों और उपदेशों में नहीं आया। चुप रह ताकि रूह तुझ पर दम करे, जानी पहचानी चीज़ों को छोड़ नूह की किश्ती में सवार हो जा। हम अभी के लिए इन 3 शेरों की व्याख्या कर रहे हैं, हमने पिछले हफ्ते ने पूरा नहीं किया था। तो रूमी आधिकारिक तौर पर कहते हैं और हाफिज़ और दूसरे भी कहते हैं कि आपको एक कैंसर की बीमारी है, और मज़े की बात यह है कि यह सिर्फ आपको नहीं है, तुम्हारे बाप को भी है। हुसैनी ये कहता है कि तुमने अपने बाप माँ का धर्म अपना लिया है और यह कैंसर बस आता जा रहा है। इरफान में वे कहते हैं कि ये कैंसर आदम से लेकर अब तक नीचे आ रहा है। ये कैंसर क्या है? तो ये रिस्टार्ट प्रोग्राम क्या कहने की कोशिश कर रहा है? जैसा कि मैंने कहा, सीधी और सपाट बात, रिस्टार्ट प्रोग्राम आपको 73वां रास्ता समझाता है, आरिफों का एक नया धर्म जिसे बाकी 72 धर्म अपनी पूरी जी जान लगाकर छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मुद्दा बहुत साफ है, जब हम इरफान और तसव्वुफ की बात करते हैं तो इसका मतलब है अरबों डॉलर। ठीक अभी जब ये प्रोग्राम चल रहा है, धुआं हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप रूमी को समझते हैं तो कुछ लोगों को अरबों डॉलर का नुकसान होता है, जब आप गेटे को समझते हैं तो कुछ लोगों को अरबों डॉलर का नुकसान होता है। आप देखिए, सिर्फ इसलिए कि आप समझें कि मेरा मतलब कुछ लोगों से है, मुझे उनकी परवाह नहीं है। मेरा मुद्दा यह है कि सभी धर्मों का एक धार्मिक दृष्टिकोण है और सभी नास्तिकों का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, और ये दोनों ही इरफान का बस एक छोटा सा कोना है। लेकिन यहाँ मुद्दा यह है कि मिसाल के तौर पर मान लीजिए इस्लाम में 400, 200, 160 फ़िरक़े हैं, उन सब की मस्जिदें हैं, उन सब के मंदिर हैं, उन सब के लोग हैं, हर जगह पैसा घूम रहा है, सारा खेल पैसे का है। ईसाइयत में भी यही है, यहूदी धर्म में भी यही है, बौद्ध और हिंदू धर्म में भी यही है। आप दुनिया के बाईं ओर जाएं, दाईं ओर जाएं, आप ग्लोब का जितना भी चक्कर लगाएं, आप खुद देखेंगे कि बातचीत अरबों डॉलर की हो रही है। इसीलिए इंटरनेट पर रूमी की बातों को तोड़ने मरोड़ने के लिए 400 लोगों को काम पर रखना कोई बड़ी बात नहीं है। वे क्यों नहीं करेंगे? उनके पास 50 अरब डॉलर का राजस्व है, वे 20 लाख डॉलर खर्च करेंगे मिसाल के तौर पर अपने खुद के प्रचारकों को लाने, वेबसाइटें लॉन्च करने, एक अदयान न्यूज़ वेबसाइट लॉन्च करने के लिए। क्यों नहीं? अदयान न्यूज़ में 500 से 600 कर्मचारी हैं और उन सभी को ईरान में हमारे पैसे के हिसाब से मिसाल के तौर पर 2 या 3 हज़ार डॉलर महीने का मिलता है। जापान जाइए, इटली जाइए, फ्रांस जाइए, हर जगह यही हाल है। तो रिस्टार्ट प्रोग्राम का नज़रिया साफ है, यह कहता है, प्यारे श्रोता, आरिफ दुनिया के 72 धर्मों को स्वीकार नहीं करते लेकिन उनका सम्मान करते हैं। वे आपके सामने एक रास्ता तजवीज़ करते हैं जिसे वे 73वां धर्म कहते हैं, और वे आपको आध्यात्मिक कैंसर से बचाना चाहते हैं। ये बहुत सादा है। पिछले हफ्ते रिस्टार्ट प्रोग्राम के लिए मान लीजिए 30 या 40 से ज़्यादा सवाल आए। मिसाल के तौर पर एक या दो लोगों ने मिस्टर रैफीपुर का जिक्र किया और हमने बदकिस्मती से अपना वक्त उनकी 10 वीडियो देखने में खर्च किया। वह आदमी इरफान के बारे में कुछ नहीं समझता। उसके पास मैं देखूं हमारे प्यारे सौरोश की इरफानी साक्षरता का 100वां हिस्सा भी नहीं है। कम से कम सौरोश के साथ खुदा उसके माँ बाप को सलामत रखे, वह कुछ तो समझते हैं, वह कुछ जानते हैं, वह एक ख़ास माहौल बयान करते हैं। जब मैंने कहा कि सौरोश इरफान के बारे में कुछ नहीं समझते तो श्री रायफीपुर का तो खुदा ही हाफिज़ है। मैं आपको उनका एक जुमला बताता हूँ, यह इतना हास्यास्पद है, इतना दिलचस्प, लेकिन मिस्टर रायफीपुर और मिस्टर सौरोश में सिर्फ यही फ़र्क है कि मिस्टर सौरोश अपने यकीन से बात करते हैं, करीब 60 से 70%। मिस्टर रायफीपुर ने ठीक दबाव बिंदुओं को ढूंढ लिया है और उन्हें समझकर वह उन्हें तोड़ मरोड़ देता है। मिसाल के तौर पर वह कहते हैं कि जो जाहिद के दिल में है, अगर मोमिन या आरिफ उसे जान ले तो वह काफिर होकर मर जाएगा, और जो आरिफ के दिल में है अगर जाहिद उसे जान ले, और वह यकीनन इसे सलमान और अब्बू जर से जोड़ना चाहते हैं। वहाँ जुमला यह है, जो सलमान के दिल में है अगर अब्बू जर उसे समझ ले तो अब्बू जर काफिर होकर मर जाएगा। उसने कभी इसका उल्टा नहीं कहा कि जो अब्बू जर के दिल में है अगर सलमान उसे समझ ले तो वह काफिर होकर मर जाएगा। यह अगर पी तो क्यों सही है, लेकिन इसका विलोम पूरी तरह सवालों के घेरे में है। इसका मतलब है कि वह रास्ते, सुलूक और इरफान के दर्जों और डिग्रियों के नज़रिए को नहीं समझता। इसके अलावा जाहिद के दिल में कुछ भी नहीं है, उसके दिल में आपसे बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। जब आप आरिफ कहते हैं तो मोमिन आरिफ का ही होता है। एक मोमिन का मतलब एक आरिफ होता है। एक मोमिन को इरफान के दायरे में होना चाहिए। मैं सभी धर्मों के लिए ईमान के दरवाजे की व्याख्या करूंगा और वे यकीनन समझ जाएंगे, लेकिन जाहिद के दिल में ऐसा क्या है जिसे सलमान समझे या न समझे, आरिफ समझे या न समझे, तसव्वुफ समझे या न समझे, उसके दिल में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, जब तक कि आप मसले को पेचीदा नहीं बनाना चाहते। नहीं, जाहिद के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मोमिन यानी आरिफ नहीं जानता हो, लेकिन आरिफ के दिल में कुछ ऐसा है कि अगर जाहिद उसे देख ले, क्योंकि वह कट्टर है, तो वह इरफान के पूरे सिस्टम की माँ बहन एक कर देगा। यह तर्क संगत है, लेकिन इसका उल्टा तो कतई मौजूद नहीं है। बहरहाल, हमें इन बातों पर अपना और आपका वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमने दूसरे नामों का भी जिक्र किया। देखिए, यह प्रोग्राम अपने रास्ते पर चलेगा। जो कोई भी इस प्रोग्राम को सुनेगा वह यकीनन समझ जाएगा कि उसे इन पिछले कई हज़ार सालों में क्या समझ लेना चाहिए था, और अगर उसकी किस्मत में समझना नहीं है तो कुछ नहीं किया जा सकता। यह इस प्रोग्राम की संरचना है। चलिए अपने मौजू पर आते हैं। अब मैं चाहता हूँ, हमने इस प्रोग्राम में समझाया कि इरफान विकासवादी नहीं है, ये विकसित नहीं होता, मतलब ये खुद विकास का अंत है, इसमें कोई फेरबदल नहीं होता, लेकिन धर्म विकसित होता है, विज्ञान विकसित होता है। सादी की नज़्म बहुत खूबसूरत है, वह कहते हैं, इंसान का जिस्म इंसानियत की रूह से शरीफा है, यह खूबसूरत लिबास इंसानियत की निशानी नहीं है। वह कहते हैं कि वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, इतिहास के सभी डॉक्टरों, सभी इंजीनियरों, उन सभी ने जो पढ़े लिखे थे, कॉलेज गए, पढ़ाई की, कायनात में हर किसी ने जिसने कभी कोई कोशिश की है वह इंसान के लिबास के लिए की है, यानी जिस्म के लिए, इसी गोश्त के लिए। देखिए, इंजीनियर ने जिस्म के लिए घर बनाया, जिस्म के लिए कार बनाई। डॉक्टर आपकी आँख ठीक करता है ताकि आप बेहतर वक़्त गुजार सकें, ज़िंदगी में दो चार और बोसे ले सकें। बेहतरीन बावर्ची ने आपके खाने के लिए खाना पकाया। टेलीविज़न जिस्म के लिए आया, रेडियो जिस्म के लिए आया, विज्ञापन जिस्म के लिए आए, लड़की जिस्म के लिए आई, लड़का एक रूमानी नज़रिए से, वह भी जिस्म के लिए आया। कायनात में जो कुछ भी साक्षरता और ज्ञान से जुड़ा है वह रूह के लिए नहीं आया है, यह सब जिस्म के लिए है। एक चीज़ का नाम बताइए जो आपको लगता है कि आपकी रूह के लिए आई है सिवाय इरफान के। इरफान सिर्फ रूह के लिए है, इसका जिस्म से कोई लेना देना नहीं है। वह कहते हैं, इंसान का जिस्म इंसानियत की रूह से शरीफ है, मतलब इंसान का जिस्म बेकार है, इंसान का जिस्म बिल्कुल भी अहम नहीं है, ये एक गंदगी का टुकड़ा है जो मिट्टी के नीचे चला जाता है, सादी कहते हैं। अगर आप इंसान के जिस्म को शरीफ और नोबल देखते हैं तो ये इंसानियत की रूह की वजह से, इंसानियत की आत्मा की वजह से शरीफा है। ये खूबसूरत लिबास इंसानियत की निशानी नहीं है। अगर इंसान बस आँख, मुँह, कान और नाक ही है तो दीवार पर बनी तस्वीर और इंसान में क्या फ़र्क है, मुझे नहीं पता। वह बहुत साफ तौर पर समझाते हैं कि उनका नज़रिया क्या है। अब यहाँ खूबसूरत हिस्सा है, खाना, सोना, गुस्सा और शहवत, हंगामा, जहालत और अंधेरा। जानवर को इंसानियत की दुनिया की कोई खबर नहीं होती। वह दुनिया के सभी 7 अरब लोगों को खारिज कर देता है। वह कह रहे हैं कि ये सभी 7 अरब जानवर हैं, लेकिन वे सोचते हैं कि वे इंसान हैं। क्यों? क्योंकि उनमें खाना है। क्या तुम खाते हो तो तुम जानवर हो। सोना है, क्या तुम सोते हो तो तुम जानवर हो। गुस्सा है, तुम जानवर हो। शहवत है, तुम जानवर हो। हंगामा है, तुम जानवर हो। जहालत और अंधेरा है, तुम जानवर हो। जानवर को इंसानियत की दुनिया की कोई खबर नहीं होती, वह इंसानियत को नहीं समझता। हकीकत में इंसान बन, वरना एक परिंदा भी हो सकता है जो इंसानों की ज़ुबान में वही बातें करता है। तुम्हारी औकात बस ये है कि तुम एक तोते हो, तुम अल्फाज रट लेते हो और उन्हें दोहराते हो। मिसाल के तौर पर, हुसैनी का कंप्यूटर रूमी से भरा है, लेकिन हुसैनी के कंप्यूटर में कभी वह चेतना नहीं होगी कि वह रूमी को समझ सके। अब मान लीजिए कोई उपदेशक, कोई जाहिद, मिस्टर रायफीपुर, एक उपदेशक, एक जाहिद कुछ अल्फाज रट लेता है और उन्हें कहता है। वह बिल्कुल इस कंप्यूटर जैसा है, उसके पास बयां करने के लिए कुछ नहीं है। एक शख्स ने रूमी के कुछ शेर रट लिए हैं और उन्हें पढ़ता है, अपने लिए सिर हिलाता है। इरफान देखने की चीज़ है, ये हंगामे और बकबक के बारे में नहीं है, ये सुनने की चीज़ नहीं है। हकीकत में इंसान बन। अब वह कहते हैं, अगर यह दरिंदगी तेरी जात से मर जाए तो तू हमेशा के लिए इंसानियत की रूह में ज़िंदा रहेगा। वह कहते हैं कि यह दरिंदगी, ये खाना और सोना और ऐसी चीज़ें जो तुम में हैं, अगर तुम इसे अपने हाथों में लेकर इसका गला घोंट सको, इसे कुचल सको, तो तू हमेशा के लिए इंसानियत की रूह में ज़िंदा रहेगा, सादी कहते हैं। यह अल्फाज का उस्ताद है, ना कि किसी जगह का कोई जुमे का इमाम या किसी इलाके का पादरी या किसी राज्य का रब्बी। यह सादी है, सुनो, यह सादी है, सादी। इंसान एक ऐसे मकाम पर पहुंचता है जहां उसे खुदा के सिवा कुछ नहीं दिखता, तो इसका मतलब है खुदा को देखा जा सकता है। वह आधिकारिक तौर पर कहते हैं कि खुदा को देखा जा सकता है। किस आँख से? आप अपने सिर की आँख से नहीं देख सकते, क्योंकि आप समय और स्थान के चार आयामों डायमेंशंस के बाहर कुछ नहीं देख सकते। यह एक चींटी की आवाज़ की तरह है जिसे आप सुन नहीं सकते। आपके कान की फ्रीक्वेंसी सिर्फ कुछ ख़ास फ्रीक्वेंसी तक ही सुनती है। आप चींटी की आवाज़ नहीं सुन सकते। अगर आप सुन लेते तो आप मर जाते। आपको उसे एक डिवाइस से सुनना होगा। वह कहते हैं, इंसान एक ऐसे मकाम पर पहुंचता है जहां उसे खुदा के सिवा कुछ नहीं दिखता। देख कि इंसानियत का मकाम किस हद तक है। देखो इंसान कहां जाता है। तूने परिंदे की उड़ान देखी है, शहवत की जंजीरों से आज़ाद हो ताकि तू इंसानियत की उड़ान देख सके। यहां वह ताना मार रहा है, वह हंस रहा है, वह तुम पर और मुझ पर हंस रहा है। तूने परिंदे की उड़ान देखी है, शहवत की जंजीरों से आज़ाद हो ताकि तू इंसानियत की उड़ान देख सके। इरफान में आओ और देखो कि तुम क्या देखते हो। तुमने कुछ नहीं देखा है। मैंने तुझे सलाह देने के लिए अपनी खूबी बयान नहीं की। ये कितनी खूबसूरत लाइन है। सादी ठीक उसी बात की पुष्टि कर रहे हैं जो मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में दो एपिसोड पहले कही थी। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है। जो कुछ भी बड़े आरिफों ने कहा है, मैं तुम्हारे लिए एक तोते की तरह दोहरा रहा हूँ। ये ठीक वही पुष्टि और जोर है जो मिस्टर सादी हुसैनी के वाक्य पर लगा रहे हैं। वह कहते हैं, मैंने तुझे सलाह देने के लिए अपनी खूबी बयान नहीं की। ये मत सोचो कि मैं तुम्हें कोई इल्म बताने आया हूँ या मैं तुम्हें अपनी कोई बात बताना चाहता हूँ। मैंने एक इंसान से इंसानियत की बात सुनी है। वह कहते हैं, मैंने भी यह सुना है, मैंने इसे एक इंसान से सुना है और मैं एक इंसान की बात करता हूँ। वह इंसान एक कामिल की बात कर रहे हैं। वह कहते हैं, सर, मैंने आदम से, इंसान कामिल से सुना कि इंसान एक ऐसे मकाम पर पहुंचता है जहां उसे खुदा के सिवा कुछ नहीं दिखता। वह खूबसूरती से उस नज़रिए को दोहराते हैं। ठीक है, हम इन तीन शेरों को परिभाषित करना चाहते हैं, उस नज़रिए को, कि क्या अभिव्यक्ति इरफान में मदद करती है, क्या ज़ुबान इरफान में मदद करती है, क्या किताबें और वक्ता या फलां फलां उपदेश, उपदेशक, जाहिद इरफान में मदद करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, वे नहीं करते। इनमें से कोई भी चीज़ इरफान में मदद नहीं करती। इरफान की बहुत गहरी खासियतें हैं। आज मैं रूह के बारे में शेर की व्याख्या करना चाहता था। मुझे नहीं पता कि मुझे इसके बारे में बात करने का मौका मिलेगा या नहीं, लेकिन चूंकि हमें अभिव्यक्ति किताबों, उपदेशों और ज़ुबान के इस मसले की शुरुआत और अंत को जोड़ना है एक बहुत ही सादे से सवाल के साथ, जो मैं आपसे श्रोता से पूछूंगा, मैं इस विषय को मिस्टर रूमी के समंदर की गहराई में 1, 2, 3 सेंटीमीटर तक ले जाऊँगा। देखो, मैं 2 सेंटीमीटर नीचे जा रहा हूँ। याद रखना, मैं ऐसी जगह नहीं जा रहा हूँ जहाँ तुम्हारी सांस फूल जाए। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जा रहा हूँ जहाँ तुम अभी भी अपना सिर ऊपर उठाकर सांस ले सकते हो। जब भी तुम चाहो, प्यारे श्रोता, तुम अपना सिर समंदर से बाहर निकालकर सांस ले सकते हो। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं तुम्हें बस इन 2 सेंटीमीटर में मिलूँगा। मैं खुद भी तुम्हारी तरह ही अपना सिर ऊपर नीचे करूँगा। डरो मत, हम सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। हम नज़रिए में एक जैसे हैं। ज़्यादा मत सोचो, मैं भी तुम्हारी ही तरह हूँ। जब भी तुम्हारे सिर में कोई दिक्कत हो, उसे पानी के नीचे से बाहर निकाल लो। बहुत ध्यान से सुनिए, उन्होंने कहा कि धर्म इरफान के नज़रिए से एक अलग कहानी है। आप समझ सकें कि धर्म क्या है, इसके लिए मुझे एक छोटी सी व्याख्या करनी होगी। पहले, धर्म इस छोटे बच्चे की तरह है जो पैदा होता है और पहले पूछता है, पानी क्या है, यह मेज़ क्या है, ये धर्म है। धर्म एक बकरी का बच्चा है, एक भेड़ का बच्चा है, एक जिराफ का बच्चा है, कि जैसे ही ये पैदा होता है, ये फौरन खड़ा हो जाता है, ये धर्म है। एक जिराफ का बच्चा बिना तुम्हारी मदद के, बिना किसी रहनुमा के, बिना कोई सोच रखे, ये बिना समझे इरफान है। ये बस अपनी माँ के पेट से बाहर गिरता है और खड़ा हो जाता है। इसे 2-3 सेकंड लगते हैं, लेकिन ये खड़ा हो जाता है। ये अच्छी घास और बुरी घास के बीच का फ़र्क जानता है, मतलब ये जानता है कि ये घास मिसाल के तौर पर जहरीली है। इसके सामने गोबर का एक टुकड़ा रखो, कौरमा सब्जी की एक प्लेट और कुछ घास, यह घास की तरफ जाएगा। यह इसे समझता है, यह बहुत सादा है। जब इंसान परिपक्वता, जिस्मानी परिपक्वता तक पहुंचता है तो वह आध्यात्मिक परिपक्वता तक भी पहुंचता है, मतलब उसके लिए सवाल पैदा होते हैं और उन सवालों का जवाब मिलना ज़रूरी है। अब हुसैनी का सवाल आपसे है, इस प्रोग्राम के श्रोता, प्लीज़ आज से अगले सोमवार तक ये सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ उसे लीजिए, जाइए और अपने सभी धार्मिक गुरुओं से पूछो। आपका जो भी धर्म है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका क्या धर्म है, जाओ और पूछो। कहो, हुसैनी ने एक सवाल पूछा है, क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? तब आपको एहसास होगा कि इस सवाल का जवाब सुनने के लिए आपको रिस्टार्ट पर ही वापस आना होगा। मतलब देखो मैं कितनी साफ बात कर रहा हूँ, मैं अब एक ऐसा सवाल पूछ रहा हूं जिसे आप जाकर किसी से भी पूछ सकते हैं, दुनिया में किसी से भी, कोई कहीं भी हो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं, कोई भी धार्मिक व्यक्ति आपको इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता और न ही कोई वैज्ञानिक इसका जवाब दे सकता है। आपको इसका जवाब सुनने के लिए रिस्टार्ट प्रोग्राम पर वापस आना होगा, या आपको आरिफ को जानना होगा, मतलब जो लोग पहले से ही इस सवाल का जवाब जानते हैं वे आरिफ को जानते हैं। और सवाल बहुत साफ है, हम कहते हैं पैगंबर मोहम्मद, पैगंबर ईसा, पैगंबर मूसा, जिनके बारे में आप धर्मों में कहते हैं वे धर्म लाए, ठीक है, यह मिस्टर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इस्लाम धर्म से पहले, इस्लाम जो मोहम्मद का नहीं है, इस्लाम का धर्म बहुत पुराना है, यह खुद कुरान में लिखा है, इब्राहिम एक मुस्लिम थे, इस्लाम इरफानी नज़रिए की एक बारीक खासियत है, मतलब एक आंदोलन की बुनियाद। मैं आपको इस्लाम के बारे में बाद में बताऊंगा, इस्लाम 1400 साल पहले से नहीं है, आप बात ही क्या कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में हमारा सवाल बहुत साफ है, हम कहते हैं मिस्टर ईसा 33 साल की उम्र में आए और इतना बड़ा आंदोलन किया, मान लिया। मिस्टर ईसा का धर्म क्या था? क्या ईसा कैथोलिक थे, ऑर्थोडॉक्स, प्रोटेस्टेंट? प्रोटेस्टेंटिज्म तो ईसा के जाने के बाद आया, कैथोलिकिज्म उनके बाद आया। क्या मोहम्मद शिया थे? सुन्नी? शिया और सुन्नी तो मोहम्मद के बाद बने। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, आप खुद इस्लाम में कहते हैं कि वह हीरा की गुफा में थे और वहाँ ऊपर से एक मखलूका जाहिर हुई जिसका नाम UFO या जिब्राइल था और उसने कहा पढ़ो। मेरा सवाल आपसे यह है, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का जिब्राइल को देखने से पहले एक धर्म था, ये आदमी उस मकाम तक कैसे पहुंचा जहां जिब्राइल आए? मोहम्मद का धर्म क्या था? नमाज, रोज़ा, खूम्स, पांचवा हिस्सा, टैक्स और जकात। रोज़ा तो हिजरा के दूसरे साल आया, मतलब ये सब मोहम्मद के जिब्राइल को देखने के बाद आए। तो मोहम्मद दो हिस्सों में बटे हुए हैं, चूंकि ईरान में 90% लोग मुसलमान हैं इसलिए मैं इस्लाम से व्याख्या शुरू करूँगा। पवित्र पैगंबर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो हिस्सों में बंटे हैं, जिब्राइल को देखने से पहले के मोहम्मद और जिब्राइल को देखने के बाद के मोहम्मद। तमाम सुन्नी और शिया लोग और ये 70-80 शिया और सुन्नी मजहबी फिरके, वे सभी मोहम्मद के जिब्राइल को देखने के बाद के दौर की बात करते हैं। प्यारे श्रोता, हर सुन्नी और शिया मौलवी इस बारे में बात करता है कि मोहम्मद के जिब्राइल को देखने के बाद क्या हुआ। वह कहता है नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, खुम्स दो, फलां फलां करो, ये सब जिब्राइल को देखने के बाद की बातें हैं। ये शिया और सुन्नी मौलवी जिब्राइल से पहले के दौर को क्यों नहीं समझाते? यही बात रूमी कहते हैं, जो सादी और हाफिज़ कहते हैं। वे कहते हैं कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने जिब्राइल को देखने से पहले ज़रूर कुछ किया होगा कि उन्होंने जिब्राइल को देखा कि वह खुदा से जुड़े, मतलब इससे पहले कि जिब्राइल खुदा ताला की तरफ से आए, मोहम्मद ने कुछ काम किए ताकि वह उस मकाम तक पहुँचे जहाँ जिब्राइल आएंगे। जिब्राइल के आने के बाद उन्होंने मोहम्मद से कहा, लोगों से कहो कि वे भी नमाज पढ़ें। पूरा इस्लामी धर्म जिब्राइल के बाद के दौर की व्याख्या करता है। इसे ही वे 72 राष्ट्रों का युद्ध कहते हैं। हाफिज मोहम्मद के जिब्राइल को देखने से पहले के धर्म की व्याख्या करते हैं। रूमी मोहम्मद के जिब्राइल को देखने से पहले के धर्म की व्याख्या करते हैं। कोई शिया या सुन्नी मौलवी आपको जवाब नहीं दे सकता कि मोहम्मद उस पहाड़ पर जिब्राइल को देखने से पहले क्या कर रहे थे, किसने उनसे कहा कि जाओ और उस पहाड़ पर बैठो, उन्होंने क्या किया कि वह उस मकाम तक पहुंचे जहां उन्होंने जिब्राइल को देखा। सारा मुद्दा यह है कि आप और मैं उस मकाम तक पहुंचे जहां हम जिब्राइल को देख सकें। उसके बाद जिब्राइल क्या कहते हैं वो उतना ज़रूरी नहीं है। तो इस्लाम का धर्म दो धर्मों में बंटा हुआ है, रूमी, अत्तार, सादी, सग़ीर इस्फ़हानी, खवाजू केरमानी, शाह नेमतुल्लाह वली और हाफिज़ का धर्म और बाकी दुनिया के मुसलमानों का धर्म। और बाकी दुनिया के मुसलमानों का धर्म जिब्राइल को देखने के बाद शुरू होता है। तो हाँ, नमाज 17 रकात है, तुम्हें इस तरह नमाज पढ़नी चाहिए, सुबह की नमाज 2 रकात है। ये बातें मोहम्मद को जिब्राइल के आने के बाद बताई गईं और मोहम्मद ने एक मेगाफोन या लाउड स्पीकर के तौर पर काम किया और इसे फैला दिया। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि मोहम्मद इस मकाम तक कैसे पहुँचे। ये वह ज़रूरी सवाल है जो हाफिज़ आपको दिखाना चाहते हैं। हाफिज आपके लिए एक ऐसे धर्म को परिभाषित करना चाहते हैं जिसे सुनकर जिब्राइल नाजिल होते हैं। इंसान एक ऐसे मुकाम पर पहुंचता है जहां उसे खुदा के सिवा कुछ नहीं दिखता। हाफिज रूमी और अत्तार का फॉर्मूला आपको जिब्राइल को देखना सिखाता है, न कि यह कि कैसे झुकना और मुड़ना है। अब अगले हफ्ते, क्योंकि मैं रूह के बारे में बात करना चाहता हूँ, मैं रूमी की रूह के बारे में बात करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए कुछ शेर पढ़ूंगा जो आपके होश उड़ा देंगे। आप देखेंगे कि रूमी शरीयत धार्मिक कानून के बारे में क्या कहते हैं। रूमी, महान रूमी, खुदा की कसम, पूरे इतिहास के सभी मौलवी रूमी की भेड़ के बाएँ पैर के छोटे अंगूठे के बराबर भी नहीं हैं। खुद रूमी की तो बात ही छोड़ दो, वे ये खुद जानते हैं। जब अल्लामा जाफरी का नाम रूमी के साथ लिया जाता है तो वह बोलते हुए कांपते हैं। मुल्ला सदरा, ये बड़े लोग जिन्हें आप अपने मजहबी दायरे में देखते हैं, जब रूमी का नाम आता है, अत्तार का नाम आता है, तो किसकी हिम्मत है कि वह बात करे, मुंह बंद हो जाते हैं। ये ऐसा है जैसे जिबूती ईरान और अमेरिका के बारे में बात कर रहा हो। आप जिबूती पर हंसेंगे, है ना। हम इस मामले को ऐसे ही देखते हैं। ठीक है, ईसाइत पर चलते हैं। ईसाइत दो हिस्सों में बंटी है। वह वक्त जब ईसा ताकत में आए, मतलब ईसा ने वे काम किए जिनसे जिब्राइल आए, फिर शैतान उन्हें गुमराह करने आया। इंजील पढ़िए, आप मेरी कही हर बात को पूरी तरह समझ जाएंगे। तो ईसा दो हिस्सों में बंटे हैं, पैगंबरी से पहले के ईसा और पैगंबरी के बाद के ईसा। अब मज़े की बात यह है कि ना तो खुद मोहम्मद ने कुरान की किताब पेश की और ना ही ईसा ने कोई किताब पेश की, उनके शागिर्दों ने उन्हें लिखा। ये खुद अहम चर्चाएं हैं जिन पर हमें बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि मोहम्मद कहते हैं बा मैं कुरान हूँ, ना कि वह किताब जो मैं पेश करता हूँ। ईसा भी यही कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, उन दोनों ने और बहुत से दूसरों ने, 124,000 पैगम्बरों ने एक जुमला कहा, खुदा तक के रास्ते सिर्फ हमारे जरिए हैं। शाह नेमतुल्लाह वली भी यह बात एक तरह से कहते हैं। ईसा कहते हैं कि खुदा का रास्ता तुम्हें सिर्फ मेरे जरिए से गुजरना होगा। बहुत ध्यान से सुनिए, तो ईसा दो हिस्सों में बटे हैं, मूसा के साथ भी यही है। तो ईसाई धर्म ईसा के मरने या आसमान पर जाने के बाद बनता है, ईसाइयों के मुताबिक, इस्लामी मुताबिक, मिसाल के तौर पर वह ऊपर उठ गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईसा के सूली पर चढ़ाए जाने के बाद ईसाई धर्म बनता है। उससे पहले ईसा उस मकाम तक कैसे पहुंचे जहां शैतान आता है, जहां जिब्राइल आता है, हम मूसा के पास जाते हैं, हम वही कहानी देखते हैं। पैगंबरी से पहले मूसा 40 साल की उम्र में एक आदमी को कत्ल किया और भाग गए, यह इतिहास में मशहूर है। मूसा किस मकाम तक पहुंचते हैं जब वह तूर पहाड़ पर जाते हैं और पेड़ उनसे बात करता है। वह कहता है मैं तुम्हारा खुदा हूं। वे इसे धर्म कहते हैं। तो धर्म का मतलब है कि आपको किसी काम के लिए मुकर्रर किया जाना चाहिए, आपको इरफान और तसव्वुफ का कुछ हिस्सा समझना चाहिए ताकि जिब्राइल आप पर नाजिल डिसेंड हों, इसे धर्म कहते हैं। मूसा के तूर पहाड़ पर जाने और खुदा को देखने के बाद उसके बाद वह आए और कानून लाए, मतलब 10 हुक्म, वह सब जिसके बारे में आप बात करते हैं। तो दुनिया के तमाम यहूदी आपके लिए उस वक़्त के बारे में बताते हैं जो मिस्टर मूसा के खुदा को देखने के बाद का है। हुसैनी का सवाल है, क्या ये बड़े आरिफ कोई नया धर्म लाए हैं? नहीं। उनका सवाल ये है, वे कहते हैं मूसा उस मकाम तक कैसे पहुँचे कि वह मूसा बने और फिर एक रहनुमा के तौर पर चुने गए और फिर खुदा ने उनसे कहा जाओ मेरे लोगों की मदद करो। सच्चे धर्म का रास्ता, प्यारे श्रोता, वह रास्ता है जो मैं आपको महान इरफानी किताबों की तरफ से बता रहा हूँ। इन बातों के लिए मेरे पास खुद साक्षरता नहीं है, लेकिन मैंने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया। आपको अगले हफ्ते तक इस सवाल के बारे में सोचना है। पूछिए, मोहम्मद ने क्या किया कि वह मोहम्मद बने कि उन्होंने जिब्राइल को देखा? मूसा ने क्या किया? जरथुस्त्र ने क्या किया? धर्मों के पास जाइए, आप देखेंगे कि सभी धर्म दो हिस्सों में बटे हुए हैं। वह हिस्सा जहां खुदा पहली बार उससे राब्ता कायम करता है, और दूसरा हिस्सा वह है जब वह खुदा की तरफ से बातें करता है। वह धर्म जो वे आपको समझाते हैं वह उसके खुदा को देखने के बाद का है। मैं ओबामा को देखने जाना चाहता हूँ। मुझे ओबामा को देखने के लिए क्या करना चाहिए? मेरे ओबामा को देखने के बाद ओबामा कहते हैं रेडियो पर जाओ और यह कहो। यह ओबामा के बाद का धर्म बन जाता है, यह ओबामा इज्म बन जाता है। लेकिन असली धर्म वह है जो मुझे करना चाहिए। वहाँ 300-400 कांग्रेसी हैं, मुझे क्या करना चाहिए? तो सवाल ये है कि अगले हफ्ते तक आपके पास वक़्त है ये कहने का कि मोहम्मद ने क्या किया कि जिब्राइल उन पर नाजिल हुए। यह नहीं कि मोहम्मद ने जिब्राइल को देखने के बाद क्या किया। इन कई हज़ार सालों में आरिफों का रास्ता यही धर्म है। यह एक ऐसा धर्म है जो आपको एक बड़े मकाम तक पहुँचाएगा, न कि वह धर्म जो बाद में शरीयत, कानून और तरीक़त, रास्ता वगैरह में बंट जाता है, जिससे अलग अलग बहसें होती हैं। मैं इस सवाल को अगले हफ्ते तक रखूंगा। मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले हफ्ते मुझे लगता है कि हम रूह और आत्मा के बारे में बात कर सकते हैं और आपको इन महान हस्तियों के धर्म और नज़रिए के बारे में बता सकते हैं। रिस्टार्ट को मत भूलिए, इसका मतलब है कि हम शुरू से शुरू करते हैं।